नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। इसराइल द्वारा ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने के दावे के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हुआ। ईरान के साथ युद्ध के विरोध में अमेरिका के शीर्ष आतंकरोधी अधिकारी जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने कहा, भारत अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में अहम राजनयिक भूमिका निभा सकता है। और पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बलूच नागरिकों की गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब किए जाने पर चिंता व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ घंटों के दौरान संघर्ष बहुत तेज हो गया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने दावा किया है कि कल रात एक हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी मारे गए हैं। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अली लारिजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे। उन्हें अगस्त 2025 में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के प्रतिनिधि के रूप में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। इसराइल की सेना ने मध्य तेहरान में बासिज अर्ध सैनिक बल के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराए जाने का दावा किया है। वहीं अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का आह्वान किया है। पेंटागन का दावा है कि हजारों हमलों ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, लेकिन ईरान की ओर से मिसाइल हमले अभी भी जारी हैं। एक रिपोर्ट।
पश्चिमी एशिया में तनाव तेजी से फैल रहा है। लेबनान में इसराइल सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। जहरानी नदी के दक्षिण में नागरिकों के लिए नए निकासी आदेश जारी किए गए हैं, जबकि लगातार हमलों के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर घना धुआं उठता जा रहा है। ईरान में नेतृत्व में कथित गिरावट के बावजूद अधिकारी अड़े हुए हैं। इसराइल की मिसाइलों का प्रक्षेपण जारी है। दोहा के ऊपर हवाई हमलों में विस्फोट की सूचना मिली है, जबकि फुजैरा के पूर्व में कुवैती ध्वज वाले एक वाणिज्यिक टैंकर पर हमला हुआ। इससे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों ने इस तनाव की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों ने स्थिति को स्थिर करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। अस्थायी बंद के बाद हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक रोकी गई मिसाइल का मलबा अबुधाबी के एक आवासीय क्षेत्र में गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र के प्रमुख जो कैंट ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल द्वारा युद्ध छेड़े जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे पत्र में कहा कि ईरान से अमेरिका को तत्काल कोई खतरा नहीं है। जो कैंट ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल के दबाव में आकर ये युद्ध शुरू किया। इस बीच व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने सुझाव दिया है कि भारत अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। एक टीवी साक्षात्कार में श्री स्टूब ने कहा कि संघर्ष के समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए अच्छी स्थिति में है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच भारत ईरान के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक और जहाज सुरक्षित हैं। श्री सिन्हा ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी।
हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। एलपीजी कैरियर दूसरा नंदा देवी रात में करीब 2:30 बजे वो कांडला पे पहुंचा और अब दोनों ही एलपीजी कैरियर से शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है। मल्टीपल डिस्चार्जेस हैं। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदरशिप टू डॉटरशिप वो अभी चल रहा है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रसेल्स की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत का पक्ष रहा है कि संवाद का रास्ता तय किया जाए, राजनयिक माध्यम का रास्ता तय किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इस संघर्ष को विराम पे लाया जाए। सभी देशों से ये हमारी आह्वान है कि संयम बरतें और संघर्ष को आगे बढ़ने से रोका जाए। जहां तक अपने संयुक्त राष्ट्र की बात की, वहां के सुधार की बात की, आपको पता है कि पिछले कई एक दशकों में ये हमारा पक्ष रहा है जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र का सुधार हो। और ऐसे मौके पर जब हम सुधार की बात करते हैं तो उसमें एक नया मायना आ जाता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि इसको जितना जल्दी करें उतना जल्दी बेहतर होगा संयुक्त राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि तेल टैंकर सेफसी विष्णु के भारतीय चालक दल के 15 सदस्यों की शीघ्र वापसी में सहायता के लिए भारत का मिशन दल मौजूद है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर अलीमोव के साथ सातवीं भारत रूस संयुक्त राष्ट्र परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। चर्चा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद रोधी उपायों, शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। वियतनाम के जातीय और धार्मिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री वाई थोंग ने आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ चंद्रशेखर कुमार से मुलाकात की। इस दौरान डॉ कुमार ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम को महत्वपूर्ण भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और भरोसेमंद संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। बलूचिस्तान में हिंसा तेज होने के साथ ही प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दो लोगों की गैर कानूनी हत्या और अन्य लोगों के जबरन लापता होने की घटनाओं को उजागर किया है। ये घटनाएं प्रांत भर में गैर कानूनी हत्याओं और जबरन गायब होने की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है। एक रिपोर्ट।
4 मार्च को केच जिले में 26 वर्षीय दुकानदार हातुम बलूच की क्रूर हत्या हुई थी। वहीं 9 मार्च को खारान जिले में 24 वर्षीय मोहम्मद इस्माइल की हत्या पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी दस्ते ने कर दी थी। मानवाधिकार संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संस्थाओं से तत्काल कार्रवाई करने और न्याय, सम्मान तथा स्वतंत्रता के लिए बलूलियों के संघर्ष में उनका साथ देने की अपील की। मानवाधिकार संस्था ने बलूच नागरिक इमदाद सैयद पर हुए क्रूर अत्याचारों की भी आलोचना की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्जुन शर्मा।
भारत ने पाकिस्तान द्वारा अहमदियों पर किए गए क्रूर दमन या रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर हवाई बमबारी की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोस में इस्लाम विरोधी भावना यानी इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में बहुत निपुण है। श्री हरीश ने कहा कि भारत में 20 करोड़ से अधिक इस्लाम समुदाय के लोग रहते हैं जो विश्व में इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। श्रीलंका के व्यापार और खाद्य सुरक्षा मंत्री वासंथा समरसिंघे ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के प्रभाव से देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। मीडिया से बातचीत में आज श्री समरसिंघे ने कहा कि श्रीलंका में आलू और प्याज का 80% से अधिक आयात किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल द्वारा ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने के दावे के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हुआ। ईरान के साथ युद्ध के विरोध में अमेरिका के शीर्ष आतंकरोधी अधिकारी जो कैंट ने इस्तीफा दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तूब ने कहा भारत अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में अहम राजनयिक भूमिका निभा सकता है। और पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बलूच नागरिकों की गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब किए जाने पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।